Hazrat Maulana is the Khalifa, Hazrat Mufti Mahmud Sahib Rahmatullah Alayh, is doing sterling work in Kashmir. Allah Ta'ala accept his sacrifices, inshallah.
Come, brothers, close to me. I feel there is language gap between me and you. So I try to speak very easy Urdu. Inshallah. Allah gives us tawfiq, me to speak and you to understand. Are both of us for amal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يمنون عليكم أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم بزرگو دوستو, میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کیا بیان کروں, تو اتنی ساری باتیں میرے ذہن میں آئیں, شاید کوئی طلب کے ساتھ ہے, مقناطیس کی کشش جیسے ہوتی ہے, ایسے ہی کبھی ہو جاتا ہے. ذہن میرا بالکل خالی تھا. ایک دفعہ میں نے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا کہ تقریباً 20-25 دن ہو گئے, نہ جمعہ کو مجھے بیان کرنے کو دل چاہتا ہے, نہ شام کو, نہ صبح کو. عجیب کیفیت ہے. حضرت نے جواب میں لکھا, کیا تمہارے نفس کو اصلاح کی ضرورت نہیں رہی؟ اپنے نفس کو بٹھا کر تنہائی میں اس کو بیان کرو کہ تمہیں ضرورت ہے. اور یہی نیت لوگوں میں بیان کرنے کے وقت کرو, اپنے نفس کو کرو تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے. میرا دوسرا لڑکا ہردوئی پڑھتا تھا, حضرت اس سے بہت محبت کرتے تھے, حضرت مولانا ابرا الحق صاحب دامت برکاتہ ہوں. وہ کہتا تھا واپس آ کر, کہا جب کوئی بڑی غلطی بالغ لڑکا کرتا تو حضرت فرماتے اس کو دوا اللغو دے دو. تو میں نے اسے پوچھا دوا اللغو کیا ہے؟ کیا حضرت فرماتے کہ غسل خانے میں جاؤ تنہا اور اپنا کان پکڑ کر اپنے نفس سے کہو کہ اتنی دور سے کس لیے آئے ہو, اتنا کرایہ خرچ کر کے اس مدرسے میں کیوں آئے ہو, اور یہاں یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تو آدمی کو کبھی کبھی اپنے نفس سے بات کرنی چاہیے تنہائی میں, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تنہائی میں اپنے آپ سے کہے. تو وہی نیت میں نے اس وقت کی, اپنے نفس سے کچھ باتیں کروں گا, اللہ کرے یہ ہم سب کے لیے نفع کی چیز بن جائے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا سیرت کا, اور اس واقعے کی ریفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں. نظام الدین میں ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پارنپوری تھے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے سنایا تھا پرانوں کے مجمع میں, علماء تھے اور پرانے تھے. واقعہ سنایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں, میں صرف یاد دلاتا ہوں. حضرت بلال رہنے والے تھے حبشہ کے, اور نقشے پر آپ کی نظر ہو تو حبشہ بحر احمر کے اس سائیڈ میں ہے, جزیرہ عرب اس سائیڈ میں ہے, بحر احمر اس سائیڈ میں دور. اور خاندان حضرت بلال کا کچھ بھی نہیں تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو پکڑ کر بیچ دیا تھا, اور جو بیچا جائے اس کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی جیسے ملازم کی. ملازم کے بدن کا کپڑا اس کا اپنا ہے, ملازم کچھ کمائے وہ اس کا اپنا ہے, اس کی پے اس کی اپنی ہے, لیکن غلام کے بدن کا کپڑا اس کے آقا کا ہوتا ہے, غلام کا نہیں ہوتا. غلام کی جیب میں پیسہ وہ غلام کا نہیں ہوتا, وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے. تو حضرت بلال خاندان کے اعتبار سے غلام بن گئے تھے, اور وطن کے اعتبار سے حبشہ میں تھے, اور شکل بیچارے آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی کیسی تھی. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے, ایمان لائے, تو کیا ہوا؟ خاندان میں تو ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس پوری امت کے سب سے بڑے, تمام صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, محدثین میں, قیامت تک صبح تک آنے والے تمام امتیوں میں افضل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. تو حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے صحابہ میں کہ میرے ساتھیو, بلال کو چھوٹا نہیں سمجھنا, ہوا سیدنا, وہ ہمارا سردار ہے. اور یہ صحابہ کا جملہ تھا, اس میں کوئی بناوٹ نہیں, اس میں کوئی بناوٹ تکلف نہیں ہوتا تھا. عزت کا معاملہ یہ. اور پھر ملا کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ جس مسجد میں امام خود ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سٹیٹس ہے اس مسجد کا؟ پورا عالم ایک طرف, عالم کی تمام مسجدیں ایک طرف, سونے سے بنائیں, چاندی سے بنائیں, عالی شان ہوں, اور ایک طرف وہ مسجد جہاں ایک بھی نماز پڑھائی ہو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ مسجد جہاں 24 گھنٹے, اور اس مسجد کے مقتدی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ایک صحابی کا کیا مقام ہے, اور اس مسجد کے مقتدی عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ, یہ ساری اتنی بڑی جماعت, اللہ اکبر. صحابہ کے بارے میں پوری امت کا ایمان ہے کہ ایک سیکنڈ, آئی ڈونٹ سے ون منٹ, ایک سیکنڈ جو صحابی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا, پوری امت کا فیصلہ ہے, کوئی اختلاف نہیں, پوری امت متفق ہے اس بات پر, وہ ایک سیکنڈ کی صحبت والا صحابی تمام عالم کے اولیاء سے بھی بڑا ہے. تو جہاں اتنے سارے فضیلت والے صحابہ ہوں, امام ایسے اور مقتدی ایسے, ایسی مسجد میں اگر اذان دینے کی ڈیوٹی ملی, وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسا سٹیٹس ملا. اور ایک تیسرا سٹیٹس حضرت بلال کو ملا تھا کہ جو مہمان آتے تھے, اور آپ کو معلوم ہے مہمان کبھی کبھی آتے تھے کسرا کے, قیصر کے, وہ زمانے کے سپر پاور تھے, اور آپ جانتے ہیں پروٹوکول کا قانون کیا ہے. کتنا بڑے سے بڑا مہمان آئے تو اس کا انتظام ذمے ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی. کس مہمان خانے کے منتظم؟ یہاں تو گورنمنٹوں میں ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے مستقل مہمان نوازی کا, یہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری. اور یہ ہوا جنت میں, دنیا میں. اور وہ روایت آپ نے سنی ہوگی, ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جنت میں گیا معائنہ کے لیے, تو میں نے محسوس کیا مجھ سے آگے آگے کوئی چل رہا ہے, جیسے باغ میں جب کوئی جاتا ہے تو کوئی لیوز پر واک کرتا ہے تو اس میں کھر کھر کی آواز آئے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے जिब्राइल मुझसे आगे भी जन्नत में कोई जा रहा है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताता हूं क्या कहा, कि जिस तरह ऑफिसर के साथ उसका पियान आगे आगे अटैची लेकर, जिस तरह मालिक के साथ उसका चाबी वाला आगे आगे लेकर, इसी तरह आपके आगे आपका खादिम बिलाल जन्नत में जा रहा। तो वो तो था बिलाल का पुराना हाल और ये था हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अनु का नया हाल। तो इस हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अनु को एक दूसरे सहाबी ने देखा कि बहुत खुश है, और आपको मालूम है खुशी गम चेहरे से नजर आता है। पूछा, बिलाल आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो हजरत बिलाल ने जवाब दिया, मैं सोच रहा था एक पॉइंट, उसमें मैं डीप गया तो मुझे लगा कि अल्लाह ने कितना बड़ा कर्म किया है, तो उसी में मैं खुश था। तो इस साथी ने कहा, मुझे भी बताओ। तो वही पॉइंट असल में बताना है, ये पूरे वाकई में। साहबी ने कहा, हमको बताओ। हजरत बिलाल ने कहा कि आई वॉज थिंकिंग, वट, मैं सोच रहा था अगर अल्लाह ने हिदायत अपने हाथ में न रखी होती, लोगों को कहा होता हिदायत तुम तकसीम करो, यू डिस्ट्रीब्यूट, लोगों को परमिशन है सिर्फ तबलीग करने का, लेकिन हिदायत किसको मिलती है? इट नोज अल्लाह ताला। तबलीग करने का हमको इजाजत है, लेकिन कौन कबूल करेगा इसका इख्तियार हमको नहीं, हमको नहीं क्या पैगंबरों को भी नहीं। कुरान ने ऐलान कर दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जिसको चाहेंगे हिदायत देंगे। तो हजरत बिलाल ने कहा, मैं इस पॉइंट को सोच रहा था कि अगर लोग हिदायत तकसीम करते और लोगों को यह ड्यूटी दी जाती और वो इंसाफ करते, जस्टिफिकेशन से काम लेते, तो वो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तकसीम करते, कि मखलूक में सबसे बड़ा हक जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो या तो वो उनके नेबर को देते, नेक्स्ट डोर नेबर, फर्स्ट हक उसका, देन उसका नेबर, देन उसका नेबर, देन उसका नेबर, या वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव से शुरू करते, पहले उनकी फैमिली, फिर उनका रिश्तेदार, फिर उनका रिश्तेदार, फिर उनका रिश्तेदार। लेकिन दोनों तरह से तो मैं बहुत दूर था, न तो मेरा कोई फैमिली रिलेशन था, न ही कोई नहीं नेबर में बसने वाला था, मेरी सिटी भी इतनी दूर, मेरी प्लेस इतनी दूर, और मेरा खानदान कुछ भी नहीं, मैं गुलाम। मैं इसी को सोच रहा था कि अगर लोग इसको तकसीम करते तो बिलाल की बारी, बिलाल का नंबर कब आता, और अगर आता भी उस वक्त हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद होते भी या ना होते। बस जब मैं इसमें डीप गया तो मुझे ख्याल आया, मैं कह रहा था या अल्लाह, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का अबू जहल, ही वाज कुरैश, अबू जहल, अंकल अबू लहब, अबू तालिब, उन सब को ईमान नहीं मिला, बिलाल को लाकर आपने ईमान दे दिया, और उनके नेक्स्ट डोर नेबर उतबा, शैबा, उकबा इब्ने भी मुईत, उबई इब्ने खल्फ, वो सब मक्का के बसने वाले, ए अल्लाह उनको आपने हिदायत नहीं दी, बिलाल को इतनी दूर से लाकर आपने हिदायत दी, ये बिलाल के साथ आपने कितना बड़ा एहसान किया। वो जो दूसरा साथी था वो भी दूर का बसने वाला था, उसने कहा, बिलाल मेरा दिल चाहता है तुम्हारे दिमाग को किस करूं, बोसा दे दूं, तुमने कैसी बात सोची, मेरे साथ भी तो अल्लाह ने यही मामला किया। ये वाकया सुनाने के बाद हजरत मौलाना ने कहा कि एक मिनट के लिए हम सब सोचें कि हमारे साथ भी अल्लाह ने यही मामला किया, हमारे साथ भी अल्लाह ने यही मामला किया। और कुरान कहता है यमुन्नून अलैकुम अन असलमू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग एहसान जिताते हैं कि हम इस्लाम लाए। कुल आप कह दीजिए ला तमन्नू अलैया इस्लामकुम, अरे तुम अपना एहसान मत जुताओ, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह तुम पर एहसान बताता है कि अल्लाह ने तुमको ईमान की हिदायत दी थी। हम लोग इस वक्त जो इस मस्जिद में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हमें अपने ईमान पर खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमको ईमान वाला बनाया, अल्लाह ने हमको ईमान वाला बनाया। और हमारा बराह रास्त कनेक्शन जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग ने मुराकबा किया, उन्होंने देखा उम्मत बहुत कमजोर है, बहुत कमजोरी है अमल की, लेकिन फिर भी देखें कि उम्मत का ताल्लुक जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है। वो फरमाते हैं, लिखा है किताबों में तसव्वुफ की, कि जब मुराकबा किया उन्होंने देखा कि रोजे अकदस के अंदर जहां हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वहां से बहुत से करोड़ों बारीक बारीक वायर्स तार निकल रहे हैं, कोई मोटा कोई पतला, कोई पतला कोई और बारीक, कोई थिन कोई थिक वायर निकल रहा है। और आगे देखा कहां जा रहा है, देखा तो कोई इसी मोमिन के कल्ब में, कोई इसके कल्ब में, कोई उसके कल्ब में। और फिर जब देखा वहां रोजे अकदस में ये कहां जा रहा है, वहां देखा ये तमाम कनेक्शन का जंक्शन हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है मुबारक। ये ईमान का कनेक्शन जो जुड़ गया, अब किसी का कम किसी का मोटा, किसी का मजबूत किसी का ढीला, यह ईमान का कनेक्शन हमारा अल्लाह ने जोड़ा है। और यह हमारे साथ बार बार हुआ है, बार बार हुआ है। कुरान ने कहा फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, यह मुराकबा, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक में मुराकबा बताया कि आदमी सोच ले, ही मस्ट थॉट, किस चीज से पैदा हुआ। हम नापाक थे, इतने नापाक कि हम में से कोई जुबान पर उसका नाम नहीं लाएगा। एक एहसान अल्लाह ने हमारे साथ किया, उस नापाक से अल्लाह ने हमको इतना हसीन बनाया, हम इसको नहीं सोच सकते। एक दफा अल्लाह हमको नापाक से पाक बना चुका, और हम नापाक थे फिर मां के पेट में, वो नापाक खून ही था सारा, उस नापाक खून के बावजूद अल्लाह ने हमको पाक बनाया, हम अब तब अल्लाह के घर में हैं। इस घर में जुनबी नहीं आ सकता, हु हैव नीड ऑफ गुस्ल, ही कैन नॉट कम इन दिस बैतुल्लाह। हमको अल्लाह ने पाक बनाया तब हम इसमें आए, उस नापाक से पाक बनाया, फिर नापाक खून से पाक बनाया, फिर हमारे अंदर कितनी गुनाहों की नापाकी है, बहुत है। उस सारी नापाकी बावजूद हमको अलाउ किया, यू कैन कम इन माय हाउस, हालांकि वो रिस्ट्रिक्शन कर सकता था, नहीं यू कांट कम, यू हैव मेड सच मोर सिन्स, मोर देन एनफ। लेकिन कभी किसी हदीस में सुना कि फलां गुनहगार मस्जिद में नहीं आ सकता, फलां गुनहगार नमाज नहीं पढ़ सकता? यह तो है कि तुम्हारी नमाज नमाज जैसी नहीं है, यह तो कह दिया, लेकिन यह नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़ सकता, यह नहीं कहा कि तिलावत नहीं कर सकता। इतने गुनाह तुम्हारी जुबान से हो जाएं, इतने थाउजेंड गुनाह हो जाएं, उसके बाद तुम इस गंदी जुबान से तिलावत नहीं कर सकते? कोई हदीस कभी ऐसी सुनी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है कि इस वक्त की नमाज तुम पढ़ोगे तो फलां नमाज से अब तक के गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, ऐसी रिवायतें हैं। वो वाली रिवायतें नहीं हैं। ऐसी रिवायतें हैं कि वुजू करोगे तो इतने गुनाह धुल जाएंगे, ऐसी रिवायत कोई नहीं कि अगर तुमने कंटिन्यू वन मंथ नमाज नहीं पढ़ी तो फिर माफी नहीं होगी, है कोई? अल्लाह ने हमारे साथ बार 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 मसला किया। और हदीस में है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश आता है, बालिश तो आप जानते हैं क्या अंग्रेजी में तर्जमा करेंगे मुझे याद नहीं है, वन हैंड, तो अल्लाह तो उसके बदले दस हाथ आएगा, और उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं। यह नहीं कहा कि जो इतना गुनाहगार होगा उसकी तरफ नहीं आऊंगा, जिसने अल्लाह को इतनी गालियां दी उसकी तरफ नहीं आऊंगा, जिसने इतनी तिलावत छोड़ दी हो उसकी तरफ नहीं आऊंगा, बल्कि क्या है, वो कहता है आ जाओ आ जाओ, कितना तुम गुनाह करोगे तुम मेरे हो, कितना तुम नाफरमानी करोगे तुम मेरे हो, तुम आकर तो देखो कि मेरी रहमत तुमको किस तरह तलब करती है। और उसमें एक और अजीब जुमला है कि अगर कोई चल कर आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो उसमें लफ्ज है हदीस पाक में हर वलतन, तो मैं स्टेप का इंतजार नहीं करता, मैं दौड़कर तुमको ले आता हूं। कैसा अल्लाह ने हमारे साथ मामला किया, ऐसा मामला अल्लाह के हमारे साथ हो तो ऐसे वक्त में दिल चाहता है कि बस अल्लाह के सामने सर डाल कर रखो। मुझसे एक दोस्त कहता था, कहा जब मैं नमाज में सजदे में चला जाता हूं मुझे इतना लुत्फ आता है, मेरा दिल चाहता ही नहीं सर उठाऊं। मैंने कहा अल्लाह की कैसी नेमत है, कहां तो आदमी की तबीयत में यह होता है सलाम फिरूं जल्दी जाऊं, और कहां अल्लाह ने यह कहा। ओहो, वो हदीस शायद मैंने कहां सुनाई, वो जो वजू वाली हदीस है जिसमें वजू के बाद गुनाहों की माफी है वजू के जरिए, और मस्जिद की तरफ एक एक कदम चलकर आना है, उस हदीस में है। उस हदीस में यह जुज भी है कि अगर कोई आदमी नमाज के बाद मस्जिद में थोड़ी देर रुक जाता है, तस्बीह नहीं पढ़ी, तिलावत नहीं की, वजीफा नहीं पढ़ा, सिर्फ ठहर गया, सिर्फ ठहर गया, इसी हदीस में है, अल्लाह पाक मलाइका से कहते हैं अरे मेरा बंदा मेरे घर में है, नाउ ही इज माई गेस्ट, ही इज नॉट वर्शिपिंग बट ही इज माई गेस्ट। और गेस्ट का ऑनर जरूरी है, इज्जत जरूरी है। अब क्या करेंगे अल्लाह, अल्लाह मलाइका से कहते हैं या मेरे घर में थोड़ी देर बैठा तो इसका इज्जत यह है, मलाइका तुम इसके लिए रहमत की दुआ शुरू कर दो। कैसी बात है, कैसी बात है, कैसा हमारा अल्लाह है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ऐसे अल्लाह से तो मोहब्बत करनी चाहिए, ऐसे अल्लाह से मोहब्बत करे आदमी तो फिर बात ही अलग होती है। और अल्लाह हमको मोहब्बत बहुत ज्यादा डाल देता उधर से, लेकिन अल्लाह जानता है ये फिर दुनिया में मस्त हो जाएंगे, इनको फिर दुनिया का होश नहीं रहेगा। और उधर उसने हमको ड्यूटी दी है, बच्चों की ड्यूटी है, फैमिली की ड्यूटी दी है, इसलिए वो हमको थोड़ा थोड़ा देता है उधर से ही, हमारी तवज्जो के बगैर। लेकिन जब हम इधर से जाते हैं और दामन फैलाते हैं अल्लाह के यहां, फिर उधर से इतना आता है, इतना आता है कि आदमी की ये जिंदगी फिर जन्नत बन जाती है। बस आप लोग तो बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपको और कोई लंबी बात नहीं सुनानी। अभी मेरे एक दोस्त कह रहे थे कल आपने बहुत शॉर्ट किया, मैं तो कहता हूं ये तो बहुत लंबा हो गया बहुत लंबा हो गया। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत दे दे, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत बस हमारे और उसके दरमियान के पर्दे खत्म होके हमें अल्लाह का इरफान हासिल हो जाए। आप मेरे लिए दुआ कर दें, मैं अल्लाह के लिए दुआ करता हूं। और इसके लिए जरूरी क्या है, देखिए पीएचडी करने के लिए एबीसीडी का पढ़ना जरूरी है, कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए और पूरा तिलावत करने के लिए नूरानी कायदे का अलिफ बा ता जरूरी है। इसी तरह से जो हमारे फराइज हैं वो मस्ट हैं, फराइज के बगैर हम चल नहीं सकते। इसलिए सुस्ती आती है। हदीस में है इन लिकुल शिर्रतिन फतरा वलिकुल फतरतिन शिर्रा, हर तेजी के साथ सुस्ती आती है और सुस्ती के बाद तेजी भी आती है। तो सुस्ती चुस्ती हम लोगों के साथ लगी रहती है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान बशर है, सुस्ती हम में आ जाती है। लेकिन इंसान का काम, मर्द का काम क्या है, सुस्ती को छोड़कर फिर चुस्त हो जाए। तो अल्लाह करे हमारी इस वक्त की ये मजलिस, हमारी अगर सुस्ती किसी किसी के पास हो, अल्लाह उसको चुस्ती में बदल दे और हम अपने तमाम आमाल को जिंदा करने वाले बन जाएं। और जो जिस जगह है वो ये नियत करे मैं अब एक स्टेप और आगे जाऊंगा, है ना, एक स्टेप आगे, थोड़ा कदम आगे बढ़ाए, अल्लाह पाक फिर तरक्यात से नवाज देंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को भी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اے الله هم تیرے گناہگار بندے ہیں، سچ مچ ہم جانتے ہیں ہمارے یہ ہاتھ اتنے ناپاک اور گندے ہو گئے ہیں कि तेरे सामने उठने के लायक नहीं है। वल्लाह तेरी पाक जात की कसम, तेरे सामने उठने के लायक नहीं है और ये नजरें इतनी नापाक गंदी हो गई कि तेरे सामने खुलने के लायक नहीं है। लेकिन मौला तूने हमें बनाया है, नापाक कतरे से तूने हमको पाक इंसान बनाया, हमें तमाम गुनाहों से पाक फरमा दे, फिर हमें पाक फरमा दे, हमारी नजरों को पाक बना दे, हमारे दिलों को पाक बना दे, हमारे दिमाग को पाक बना दे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम खताओं को, गलतियों को, गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा पाक बना दे कि तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में दाखिल हो जाए, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैवस्त हो जाए। ऐ अल्लाह तू हमें अपना बना ले, ऐ अल्लाह तू हमें अपना बना ले, ऐ अल्लाह तू हमें अपना बना ले और मौला तू हमारा बन जा, हमसे अपने दीन का काम ले ले। तुझे तो कयामत तक दीन का काम जारी रखना है और मखलूक से ही कराना है, हम गुनाहगारों को भी दीन के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे लिए कोई कमी नहीं, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, अगर तू हमसे अपने दीन का काम लेगा हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। मौला तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी, हम गुनहगारों को कबूल फरमा ले, अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले, हमसे अपने दीन का काम ले ले। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह कुरान का नूर हमारे दिलों में दाखिल फरमा दे, ऐ अल्लाह हदीस का नूर हमारे दिलों में दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह इंसानों के दरवाजों से बचाकर तेरे दरवाजे से हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, तेरे दरवाजों से हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस्मानी रूहानी ईमानी तमाम कमजोरियों से शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कयामत में हमारा हशर फरमा दे। दुनिया में तूने हमें अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, हमारी तलब के बगैर पैदा फरमाया, हमारे इस्तेहकाक के बगैर पैदा फरमाया। ऐ अल्लाह आखरत में भी उनके साथ हशर नसीब फरमा, आखरत में भी उनके साथ हमें उठा, आखरत में भी उनकी शफात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रजा वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह हमसे गुनाह हो जाते हैं, ہم قصدن نہیں کرتے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ چھوٹ جائیں، لیکن یا اللہ ماحول خراب ہے، ہم مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ نصیب فرما، اے اللہ پردہ نصیب فرما، اے اللہ پردہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تو اپنے دربار کے لائق بنا دے، جو ہمیں مانگنا یاد رہا اس کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اے اللہ کہنے والے کو بھی نصیب فرما، سننے والوں کو بھی نصیب فرما، میری یہاں حاضری کو تیرے دین کی ترقی کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی دینی ترقی کا ذریعہ بنا دے، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ان بھائیوں کا ہم پر بہت حق ہے، زبان ان کی ہمیں نہیں آتی، اے اللہ ان کے قلوب میں تو اپنی محبت غیب سے داخل فرما دے، اے اللہ ان کے دلوں میں تو اپنا نور غیب سے داخل فرما دے، اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور اسلام کا فکر غیب سے داخل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمۃ